नमस्कार भारत, 1 नवंबर गुरुवार। मैं हूं आदर्श राठौर। कारोबार सुगमता रैंकिंग में 23 पायदान चढ़कर 77वें नंबर पर पहुंचा भारत। क्या ये मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है?
आज से 2 साल पहले हम 142वें स्थान पर थे, फिर हम 130 पे हुए, फिर हम 100 पे आए और आज हम 77 पे हैं।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादी हिंसा के कारण अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठने लगे सवाल।
जनता को कौन लड़ेगा? जनता का आवाज कौन उठाएगा? तो हम लोग मजबूर में लड़ना पड़ता है।
जानेंगे केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच कड़वाहट और नीतिगत मतभेदों की वजह क्या है। होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, गुरप्रीत सैनी से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार करने की सहूलियत के मामले में भारत 23 अंकों के उछाल के साथ 77वें पायदान पर आ गया है। विश्व बैंक की ये रैंकिंग बुधवार को जारी की गई। इस सर्वे में 190 देशों को शामिल किया गया था। स्विट्जरलैंड के डॉक्टरों ने एक नई तकनीक विकसित की है, जिसकी मदद से लकवाग्रस्त मरीज दोबारा चल सकते हैं। डॉक्टरों की टीम ने बताया कि उन्होंने 3 लकवाग्रस्त मरीजों की रीढ़ की हड्डी में बिजली से चलने वाला एक उपकरण प्रत्यर्पित किया। इस उपकरण के जरिए मरीज के दिमाग ने उनके पैरों को सिग्नल भेजा। उपकरण चालू होने के बाद मरीज 1 किलोमीटर तक चले। उपकरण बंद करने के बाद भी वो कुछ देर तक चलते रहे। बीबीसी साइंस के संवाददाता ने बताया कि ये तकनीक कोई इलाज नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कुछ लकवाग्रस्त मरीजों को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। प्रत्यर्पण करने वाली एक न्यूरोसर्जन जोसलीना ब्लोच ने इस नतीजों को अभूतपूर्व बताया।
I've been working in the neuroscience now for a long time and I know that when you have
मैं न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है और वो ठीक ना हो, तो इंसान हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो सकता है। पहली बार मैंने ये बदलाव देखा है। ये मेरे लिए एकदम नई चीज़ है। ये थे एक न्यूरोसर्जन जोसलिन ब्लोच के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सऊदी पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या कैसे हुई, इसे लेकर तुर्की ने पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया है। तुर्की की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पहले से बनाई गई योजना के अनुरूप जमाल खाशोजी को सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में घुसने के तुरंत बाद गला घोटकर मार दिया गया था। इसके बाद उनके शव के टुकड़े टुकड़े करके कहीं फेंक दिए गए। हालांकि तुर्की अपने इन दावों के समर्थन में किसी तरह का सबूत पेश नहीं कर पाया। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सल्वा कीर ने अपने देश के लोगों से 5 साल चले गृह युद्ध के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध ताकत की लड़ाई और जनता के साथ आत्मविश्वासघात था। सल्वा कीर एक समारोह में हजारों लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह में पिछले महीने हुए शांति समझौते का जश्न मनाया गया। राष्ट्रपति कीर ने लोगों से कहा कि अब आगे बढ़ने का वक्त है। युद्ध किसने शुरू किया, अब इस तरह के आरोप लगाने बंद करने होंगे। जो लोग खुद को नेता कहते हैं, उन्हें इन आरोपों को सामूहिक रूप से स्वीकार करना होगा और देश के लोगों से ये वादा करना होगा कि अब वो दोबारा कभी उन्हें युद्ध में नहीं धकेलेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मेक्सिको से लगने वाली अपनी सीमा पर 15,000 सुरक्षा बलों को तैनात कर सकते हैं, ताकि सेंट्रल अमेरिका से उत्तर की ओर बढ़ रहे प्रवासियों के समूह को रोका जा सके। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने प्रवासियों को बड़ा खतरा बताया और दोहराया कि प्रवासियों को सीमा के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। ट्रंप ने उन आरोपों से भी इनकार किया जिसमें कहा जा रहा है कि वो आगामी मध्यावधि चुनावों से पहले अमेरिका के लोगों के मन में जानबूझकर डर बैठा रहे हैं। इससे पहले सोमवार को अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने सीमा पर 5,000 सुरक्षा बलों को तैनात करने की बात कही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन कर रहे लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दरअसल ये प्रदर्शनकारी ईश निंदा की दोषी एक ईसाई महिला की फांसी की सजा को पलटने के कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार करने की सहूलियत के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग में बड़ा सुधार हुआ है। विश्व बैंक ने साल 2019 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सर्वे जारी किया है, जिसमें भारत 23 पायदान चढ़कर 77वें नंबर पर आ गया है। इस सर्वे में 190 लोगों को शामिल किया गया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रैंकिंग में इस सुधार को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। सुने,
प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि हमें पहले 50 में पहुंचना है, और ये तब कहा था जब सरकार बनी तो हम पोजीशन नंबर 142 पे थे। तो 142 से 5 साल में 50 तक पहुंच जाएं, ये शायद आज तक वर्ल्ड बैंक बिजनेस रैंकिंग्स में हुआ नहीं है। 3 साल बाद हम 100 नंबर पे थे, 4 साल बाद हम 77 पे थे। और इसके पीछे एक कारण ये भी रहा कि DIPP जो इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एडमिनिस्टर करता है, वो इस बारीकियों में गया कि हर क्राइटेरिया पे अगर हमने रैंकिंग ऊपर करनी है तो क्या क्या हमें सब स्टेप्स करने पड़ेंगे।
190 देशों के बीच हुए सर्वे के आधार पर बनाई गई इस रैंकिंग में आए सुधार के मायने क्या हैं और इससे भारत के व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा से यही सवाल किया हमारी सहयोगी सिंधु वासिनी त्रिपाठी ने।
देखिए, कोई भी देश में जब निवेश का मौका बनता है तो उसके लिए कई पैमानों को देखा जाता है, और उसमें से एक पैमाना जो है वो कारोबारी सुगमता का है, जिसे हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से जानते हैं। और इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर तय होता है कि आपके यहाँ कारोबार करना आसान है या कारोबार करना मुश्किल है। अब जैसे आपको देखना है कि कारोबार शुरू करना है तो उसमें कितना आपको समय लगता है, आपको देखना है कि कोई भवन निर्माण करना है तो उसमें कितना समय लगता है, उसके लिए जो परमिट लेना है उसमें कितना समय लगता है, कर्ज लेना है उसके लिए क्या परेशानी या क्या दिक्कत या कितनी सहूलियत है, बिजली का कनेक्शन पाना है वो कितना आसान है। तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर तय होता है। और हमने ये देखा है कि जो सरकार की ओर से और विश्व बैंक की ओर से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कई पैमानों पर हमारी स्थिति अच्छी हुई है। जैसे आप देखिए, कंस्ट्रक्शन परमिट यानी कि जब निर्माण की बात आती है वहां पे हम 181वें स्थान पर थे 2017 में, अब हम 52वें स्थान पर हैं। व्यापार के लिहाज से देखें, विदेश व्यापार के लिहाज से देखें, 146 से 80 स्थान पर आ गए हैं। कारोबार शुरू करने की बात करें तो 156 से 137वें स्थान पर आ गए हैं। कर्ज लेने की बात करें तो 29 से 22वें स्थान पर आ गए हैं। बिजली की बात करें तो 29 से 24वें स्थान पर आ गए हैं। एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करने का, वो 164 से हम 163 पे आए हैं। और ये जो सारी रैंकिंग है वो 190 देशों की है। तो कई पैमाने ऐसे हैं जहां पर स्थिति आपकी बेहतर हुई है, और जिसका नतीजा ये है कि हम आज से 2 साल पहले हम 142वें स्थान पर थे, फिर हम 130 पे हुए, फिर हम 100 पे आए और आज हम 77 पे हैं।
क्या इसका आने वाले वक्त में फायदा देखने को मिलेगा FDI के तौर पे या निवेश ज्यादा होगा, इस बात की कोई गारंटी है?
देखिए, गारंटी तो कोई चीज नहीं होती है, लेकिन जैसा मैंने आपसे ये कहा कि कोई भी विदेशी निवेशक जब पैसा लगाता है किसी भी देश में तो वो ये देखता है कि वहाँ कारोबार करना आसान है या नहीं है। अब यदि हमारे पास एक ऐसा रैंकिंग है जिसे विश्व बैंक ने तैयार किया है, और वो रैंकिंग जो दो प्रमुख क्षेत्र हैं दिल्ली और मुंबई, वहां के आधार पर तैयार किए गए हैं, तो एक उसे भरोसा मिलता है कि यहाँ पर कारोबार करना बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये स्थिति विश्व बैंक जो बता रही है उसके मुताबिक कारोबार करना यहाँ पे सुगम है। और जहां तक बात FDI की है, विदेशी निवेश की है, पिछले कुछ सालों में हमने इम्प्रूवमेंट देखा है, आगे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जहां तक शब्द गारंटी, मैं गारंटी शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि एक भरोसा बनता है और भरोसे से निवेश का माहौल बनता है जो आगे चल करके निवेश में तब्दील होता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे और अच्छा ही होगा।
वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा बता रहे थे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार के मायने क्या हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच कड़वाहट और नीतिगत मतभेद बढ़ते ही जा रहे हैं। इन बढ़ते मतभेदों और कड़वाहट के बीच आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 की चर्चा भी गर्म है। हालांकि कल वित्त मंत्रालय ने सफाई जारी करके कहा कि वो आरबीआई की स्वायत्तता को जरूरी मानता है। इस पूरे मसले पर हमारी सहयोगी सारिका सिंह ने बीबीसी संवाददाता समीर हाशमी से बात की।
कुछ अखबारों ने ये खबर दी कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनके मतभेद भारत सरकार के साथ काफी बढ़ गए हैं और वो हो सकता है रिजाइन कर दें। इसकी वजह ये दी गई कि भारत सरकार ने एक सेक्शन 7 है आरबीआई एक्ट का, उस एक्ट के अंडर जो है वो सरकार आरबीआई को कोई भी डायरेक्टिव यानी कि कोई भी अपना एक राय देकर ये कह सकती है कि आपको ये लागू करना जरूरी है। तो यहाँ पे ये सवाल उठ रहा था कि क्या वाकई आरबीआई इंडिपेंडेंट है, उनके पास आजादी है अपने फैसले लेने की, क्योंकि ये अगर सेक्शन 7 लागू किया गया तो ये पहली बार होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है आरबीआई की हिस्ट्री में। जब से आरबीआई 1950 के दौरान बना है कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई सरकार ने सेक्शन 7 लागू किया हो। लेकिन फिर हमने दोपहर में ये देखा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने के ऑफिस से एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि आरबीआई की ऑटोनॉमी हमेशा जरूरी है लेकिन लोगों के लिए काम करना, उनके हित में फैसले लेना ये भी जरूरी है, और इस सिलसिले में भारत सरकार हर वक्त आरबीआई से बातचीत करती रहती है और करती रहेगी। इस स्टेटमेंट में ये साफ नहीं हुआ कि उन्होंने ऐसा सेक्शन 7 इंप्लीमेंट किया है यानी उसको लागू किया है नहीं किया है, इस पे कोई साफ बात निकल के नहीं आई। ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि रिजर्व बैंक गवर्नर जो है उर्जित पटेल रिजाइन कर देंगे, ऐसा भी नहीं हुआ अब तक, और अब ये लग रहा है कि दोनों साइड थोड़ा डैमेज कंट्रोल कर रही है। इस ये जो मतभेद जो आ गए हैं सामने इसको अब किस तरह से प्ले डाउन किया जाए ये देखा जा रहा है, ये किया जा रहा है
जी। तो डैमेज कंट्रोल की ही कोशिश होगी या इसका हल भी निकलेगा या फिर आगे और टकराव बढ़ेगा?
इससे ज्यादा टकराव तो अब नहीं लगता कि बढ़ेगा क्योंकि जो भी बड़े मतभेद थे वो तो अब सामने निकल के आ गए हैं। अगर आप देखें क्योंकि पिछले हफ्ते डिप्टी गवर्नर ने पब्लिकली ये कहा कि आरबीआई की ऑटोनॉमी खतरे में नहीं होनी चाहिए, वित्त मंत्री ने पब्लिकली जो है आरबीआई को क्रिटिसाइज किया है खासतौर पे उनके कुछ फैसलों को लेकर 2008 से 2014 के दौरान जो लिए गए थे, तो इससे ज्यादा मतभेद तो नहीं बढ़ सकते हैं।
रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। यहाँ के बस्तर इलाके में एक के बाद एक हुई माओवादी हिंसा के कारण अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बलों के इंतजाम के बाद हुई इन हिंसक कार्रवाइयों में पिछले 5 दिनों में 8 लोग मारे गए हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित 18 विधानसभा की सीटों पर अगले महीने की 12 तारीख को मतदान होने हैं, लेकिन एक के बाद एक होने वाली माओवादी हिंसा की घटनाओं ने राजनीतिक दलों को चिंता में डाल दिया है। पिछले 5 दिनों में कुल 8 लोग मारे गए हैं। बस्तर के अंतिम छोर पर बसे कोंटा के कांग्रेस पार्टी के विधायक और उम्मीदवार कवासी लखमा का कहना है कि हिंसा की ताजा घटनाओं से आदिवासी दहशत में हैं।
जनता को कौन लड़ेगा, जनता को कौन लड़ेगा, जनता का आवाज कौन उठाएगा, तो हम लोग मजबूर में लड़ना पड़ता है, जान को हम परवाह भी ना करके जनता हमारा है, हमारा तरफ देख रहा है।
लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि हर बार चुनाव के समय ऐसी हिंसक गतिविधियां बढ़ जाती हैं।
हर चुनाव में आप देखे होंगे कि कुछ न कुछ घटना ये करते हैं और एक दहशत का वातावरण बनाना चाहते हैं। पुलिस सक्षम है उसको ठीक करे। देखिए धीरे धीरे नक्सलवाद का एरिया सिमटता जा रहा है, सरगुजा से लेकर अन्य क्षेत्रों में भी और बस्तर में।
इधर छत्तीसगढ़ में नक्सल मामलों के विशेष पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी का कहना है कि राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को आवश्यक सुरक्षा दी जाएगी।
सुरक्षा बलों के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि जो भी प्रत्याशी हैं उनको पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, तो जो ही प्रत्याशी नामांकन के बाद घोषित होता है उसको पूरी सुरक्षा दी जाएगी।
डीएम अवस्थी का कहना है कि चुनाव के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसके लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।
जो कैंपेनिंग है चाहे प्रत्याशी की हो चाहे बाहर से आए हुए जो उनके नेता हैं, उसके लिए हमने हर जिले में जो एडिशनल एसपी हैं उनको सिर्फ वीआईपी और प्रत्याशियों की सुरक्षा के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया है।
सुरक्षा के ये इंतजाम कितने कारगर होंगे इस पर कोई भी टिप्पणी करना जल्दीबाजी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव बहिष्कार का नारा देने वाले माओवादी हर बार की तरह चुनाव के दौरान कहीं अधिक हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
श्रोताओं, आपको याद होगा कि इसी साल मार्च में बीबीसी शी के नाम से हमने एक कैंपेन चलाया था, जिसके तहत महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी राय जानी गई थी। ये जानने की कोशिश की गई थी कि वो कैसी दुनिया की परिकल्पना करती हैं। अब ऐसा ही अभियान आज यानी 1 नवंबर से पाकिस्तान में शुरू हो रहा है, जिसकी अगुवाई शुमैला जाफरी कर रही हैं। इस अभियान का पूरा कलेवर क्या है, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता अमरीश द्विवेदी ने उनसे बात की।
देखिए, इंडिया में जो बीबीसी शी हुआ था इस साल मार्च में, उसी पे हम बिल्ड अप कर रहे हैं और हम पाकिस्तान में लेकर आए हैं इसको, जहाँ पे हम 4 सूबों के अंदर जो 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में हमने उनको सिलेक्ट किया है। इन यूनिवर्सिटियों में हम जाएंगे और हम पाकिस्तान की महिलाओं को, यंग लड़कियों को ये मौका दे रहे हैं कि वो हमें बताएं कि वो क्या इश्यूज़ हैं जिनके बारे में वो ज़्यादा स्ट्रांगली फील करती हैं, मीडिया में जो औरतों के जो मुद्दे हैं उनको जिस तरह उठाया जा रहा है उस पर उनकी राय क्या है, और वो क्या चाहती हैं कि किस किस्म के जो इश्यूज हैं वो हाईलाइट किए जाएं। हम इसके लिए 4 मुख्तलिफ शहरों का सफर कर रहे हैं और कल हमारा पहला इवेंट हो रहा है लाहौर के कनेर कॉलेज में, जो कि टॉप वुमेन यूनिवर्सिटी भी है और कॉलेज भी है लाहौर का। हिस्टोरिक ये जो तकसीम थी उसके पहले से यहीं पर है। तो इसका जो मकसद है वो यही है कि एक तो बीबीसी को पहुंचाना, नई यंग जनरेशन को उससे तारुफ कराना और उन्हें इंगेज करना, और दूसरा साथ में ये जानना कि मुख्तलिफ इलाकों में जो खवातीन रहती हैं पाकिस्तान की औरतें, उनके क्या मसले हैं, उसकी नौयत क्या है, और क्या वो जो तासुर हमने बनाया होता है, जो स्टीरियोटाइप्स हमारे हैं जो हम बैठ के अपने दफ्तरों में और अपनी एडिटोरियल मीटिंग्स में समझते हैं, क्या ये तस्वीर वैसी ही है या इससे कुछ मुख्तलिफ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब हम पूरे पाकिस्तान में जाएंगे तो हमें इसके पर बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा, जिस पर हम दूसरे मरहले में उन मुद्दों पर स्टोरीज करेंगे और कहानियां सुनाएंगे अपने श्रोताओं को।
पाकिस्तान में बीबीसी शी कैंपेन शुरू होने के बारे में जानकारी दे रही थी बीबीसी संवाददाता शुमैला जाफरी। और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। गुरप्रीत, क्या कहते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार?
जी, कई अखबारों में ये खबर दिख रही है, हेडलाइन है ज़्यादातर अखबारों में, रिजर्व बैंक की स्वायत्तता ज़रूरी है लेकिन जनहित में सलाह देती रहेगी सरकार, ये हेडलाइन है। और दैनिक भास्कर ने लिखा है अपनी हेडलाइन में, पहली बार आरबीआई पर दबाव, गवर्नर पद छोड़ सकते हैं उर्जित।
जी,
इसके अलावा रफाल विमानों की कीमत सीलबंद लिफाफे में सौंपे केंद्र सरकार, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये खबर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वो फ्रांस से खरीदे जा रहे 36 रफाल लड़ाकू विमानों की कीमत की जानकारी उसे 10 दिन के भीतर सीलबंद लिफाफे में सौंपे। इसके अलावा भारतीय ऑफसेट साझेदार को सौदे में शामिल करने के संबंध में पूरी जानकारी उसे और याचिका दायर करने वालों को दी जाए।
जी,
इसके अलावा कोर्ट में बोले अकबर, झूठे आरोपों के चलते पद छोड़ना पड़ा। द हिंदू और दैनिक भास्कर ने ये खबर लगाई है। यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने बुधवार को अदालत में बयान दर्ज कराया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के ने मामले की सुनवाई की। अकबर ने कहा कि यौन उत्पीड़न के झूठे आरोपों के कारण मुझे नुकसान हुआ है, मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूं, करीबी लोगों की नज़रों में मेरी छवि खराब हुई है। इसके अलावा हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण में मामूली सुधार, दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उससे जुड़ी एक खबर है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे ही चलेंगे।
जी बिल्कुल, ये समस्या है, कल भी हमने इस पे बात की थी कि कितनी गंभीर समस्या है। ये सरकार ने हिदायत दी थी कि अगरबत्ती भी ना जलाएं आप दिल्ली में, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है।
जी, इसके अलावा रेलवे का तोहफा है कि कई ट्रेनों से फ्लेक्सी फेयर हटाया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफा देते हुए 15 प्रीमियर ट्रेनों से फ्लेक्सी फेयर प्रणाली खत्म कर दी है।
जी,
ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स हिंदुस्तान अखबार में है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका आजकल संवैधानिक संकट के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रानिल विक्रम सिंघे की जगह महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त करके सबको हैरान कर दिया है। पद से हटाए गए विक्रम सिंघे अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है। इस बीच नवनियुक्त प्रधानमंत्री राजपक्षे ने अपना कामकाज भी संभाल लिया है। ऐसे में श्रीलंका की राजनीति में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया जहान में इस बार संदीप सोनी इसी घटनाक्रम की पड़ताल कर रहे हैं।
दुनिया जहान।
Tensions have been rising around some government buildings in the Sri Lankan capital Colombo since the sacking of the government.
26 अक्टूबर की शाम ढलते ढलते श्रीलंका में तनाव बढ़ता जा रहा था। रात गहराने से पहले राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के कार्यालय से एक बयान जारी किया जाता है। बयान में कहा गया कि महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। ये घोषणा ऐसे समय हुई जब रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे और संसद में अपने लिए बहुमत का दावा कर रहे थे। रानिल विक्रमसिंघे कुछ ज्यादा सोच पाते उससे पहले ही राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला देते हैं।
श्रीलंका प्रजातंत्र समाजवादी जनरली अब्रामन इंदुरे कार्यभारी
प्रधानमंत्री के पद से हटाए गए रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने के लिए संसद का आपात सत्र बुलाया, लेकिन इसके जवाब में राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने संसद को 16 नवंबर तक के लिए निलंबित कर दिया। राष्ट्रपति के इस फैसले पर श्रीलंका के आम लोग भी हैरानी जताते हैं। श्रीलंका की राजनीति में इस समय तीन किरदार हैं, जिनमें से मैत्रीपाला सिरिसेना और रानिल विक्रमसिंघे ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया है। श्रीलंका की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार वेंकट नारायण इसकी वजह बताते हैं।
कुछ 15 दिन पहले एक कैबिनेट मीटिंग में मैत्रीपाला सिरिसेना ने कहा कि कोई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का आदमी लगता है, वो मुझे और महिंद राजपक्षा का भाई जो डिफेंस सेक्रेटरी थे गोटाबाया राजपक्षा, दोनों को मरवाने की कोशिशें किए जा रहे थे। वो रानिल विक्रमसिंघे को बोले थे कि भाई इसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करो। जितना सीरियसली मैत्रीपाला सिरिसेना चाहते थे कि सरकार इस मसला को ले ले, इतना सीरियसली नहीं लिया गया था। और पुलिस आईजीपी ने कहा नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं है। और मैत्रीपाला सिरिसेना का कहना ये है कि रानिल विक्रमसिंघे उनके साथ मेजर इश्यूज के ऊपर भी चर्चा नहीं कर रहे थे, तो इस कारण से दोनों के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगा। और कुछ दिन पहले रानिल विक्रमसिंघे इंडिया आए थे और प्रधानमंत्री के मोदी जी के साथ चर्चा करने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट इश्यू किए थे, ये कहते हुए कि भारत बहुत नाराज है, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किए हैं और खर्चना चाहते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर श्रीलंका में, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि सिरिसेना मना कर रहे थे। खैर उनका नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन ये सब चीज मिलके सिरिसेना को ऐसा लगा कि दोनों की बात नहीं बनेगी, इनको निकाल देना पड़ेगा।
लेकिन एक समय ऐसा भी था जब महिंदा राजपक्षे आंख की किरकिरी बन गए थे और उन्हें सत्ता से बाहर रखने के लिए मैत्रीपाला सिरिसेना ने रानिल विक्रमसिंघे से हाथ मिला लिए थे।
2015 में वजह सिर्फ ये था कि वो चाहते थे उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जो महिंदा राजपक्षे नहीं किए थे। इस कारण वो पार्टी से अचानक निकल गए थे और रानिल विक्रमसिंघे के साथ हाथ मिला के प्रेसिडेंशियल चुनाव जो हुआ था जनवरी 2015 में लड़े थे और महिंदा राजपक्षे को हरा पाए थे, क्योंकि यूएनपी और एसएलएफपी जो मैत्रीपाला सिरिसेना का फैक्शन था दोनों मिलके मेजॉरिटी हासिल किए थे। तो ये समझा जा रहा था कि महिंदा राजपक्षे एक डिक्टेटोरियल तरीके से राज कर रहे थे और वो एलटीटीयू को 2009 में हराने के बाद एक सिंगला नेता जैसा उभरे थे और वो समझ रहे थे कि सिर्फ सिंगला वोट के माध्यम से ही वो राज कर सकते हैं। तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलाया गया था, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी दो बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्लॉज निकाल दिया गया था सिर्फ महिंदा राजपक्षे का रास्ता साफ करने के वास्ते, ताकि वो जितने बार भी चाहे उतने बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ये लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो सब ग्रुप्स मिलके महिंदा राजपक्षे को हराए।
यहाँ ये सवाल भी उठता है कि जिस महिंदा राजपक्षे को परास्त करने के लिए मैत्रीपाला सिरिसेना ने 3 साल पहले एड़ी चोटी का जोर लगाया, उन्हीं राजपक्षे पर सिरिसेना अब इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं?
सिरिसेना ये तय कर चुके हैं कि विक्रमसिंघे के साथ मिलकर देश को चलाना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने अपना पुराना पार्टी कलीग महेंद्र राजपक्षा को वापस बुला के प्रधानमंत्री की कुर्सी में बिठाए हैं। पहले जब ये 2015 में चुनाव लड़ रहे थे, ये कह रहे थे सिर्फ राजपक्षा को पदवी से हटाने के लिए, उनको चुनाव में हराने के लिए हम आए हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही टर्म के लिए प्रेसिडेंट रहूंगा, उसके बाद मैं पदवी के पीछे नहीं भागूंगा। लेकिन कुछ महीने से ये चर्चा चल रही है कि वो दूसरे टर्म में भी इंटरेस्टेड हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजपक्षा और सिरिसेना का बीच में ऐसा कुछ चर्चा हो गई होगी कि हाँ भाई, अगर आप मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे फिर आपको प्रेसिडेंट के एसोसिएट से चुनाव में अगले बार हम आपको सपोर्ट करेंगे। राजपक्षा ये भी कह रहे हैं कि भाई अब ये बात नहीं बनती है तो फिर चुनाव हो जाए। वो समझते हैं कि उनके पास पॉपुलर सपोर्ट है। श्रीलंका के बुद्धिस्ट लोग राजपक्षा को एक हीरो मानते हैं।
श्रीलंका में अब सबकी नजरें 16 नवंबर पर टिकी हैं, जब संसद में शक्ति परीक्षण होगा। श्रीलंका के इस घटनाक्रम पर भारत की पैनी नजर है। श्रीलंका में राजनीतिक समीकरण यदि बदलते हैं तो भारत के लिए इसके क्या मायने होंगे? इस सवाल पर वेंकट नारायण कहते हैं,
भारत में ये समझते हैं कि राजपक्षा एक चीन का तरफ ज्यादा करते हैं और भारत को नुकसान हो सकता है। मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो चीन के पास उस समय गया है जब भारत उनको मदद नहीं कर पाया पॉलिटिकल रीजंस के वजह से, तमिलनाडु के वजह से। अब इस सरकार, मोदी जी के सरकार, तमिलनाडु के पॉलिटिक्स के ऊपर कोई मतलब उनका कुछ नहीं है, क्योंकि डीएमके या ये एडीएमके उनके पार्टनर्स वगैरह नहीं है। राजपक्षा प्रधानमंत्री बनने के बाद और अगले चुनाव भी जीतने के बाद अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है।
दूसरी तरफ चीन ने श्रीलंका में बड़े पैमाने पर निवेश किया है और श्रीलंका चीन का कर्जदार भी है। श्रीलंका अपनी मौजूदा लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चीन और भारत दोनों से मदद लेना चाहेगा, लेकिन ये सब निर्भर करेगा इस बात पर कि 16 नवंबर के बाद श्रीलंका की क्या तस्वीर बनती है।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। चलिए सबसे पहले जिक्र करते हैं क्रिकेट का, क्योंकि आज इंडिया और वेस्ट इंडीज का मुकाबला है तिरुवनंतपुरम में ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में। इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच ये पांचवा ओडीआई मुकाबला होगा और आखिरी ओडीआई मुकाबला होगा। इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच चल रही इस सीरीज में ओडीआई मुकाबलों में पहला मुकाबला इंडिया ने जीता था, तो वहीं दूसरा मुकाबला टाई हो गया था और तीसरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने जीत हासिल की थी, तो चौथे मुकाबले में भारत ने फिर से कमबैक करके वेस्ट इंडीज को चारों खाने चित कर दिया। और अब ये पांचवा मुकाबला देखना दिलचस्प होगा कि किसके खेमे में जाएगा, भारत या वेस्ट इंडीज। आपको बता दें, इससे पहले इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच हुई टेस्ट सीरीज में भारत ने दोनों ही टेस्ट मुकाबले अपने नाम किए थे। इस आखिरी ओडीआई के बाद भारत और वेस्ट इंडीज के बीच T20 का मुकाबला शुरू होगा, जो शुरू होगा 4 नवंबर से। तो वहीं आपको अगर पेरिस में लेकर जाएं तो वहां पर पेरिस मास्टर्स की टेनिस कोर्ट पर रौनक जमी हुई है और आज मुकाबला है रॉजर फेडरर का कनाडा के खिलाड़ी मिलोस राओनिक के साथ। तो वहीं डोमिनिक थीम भिड़ेंगे फ्रांस के खिलाड़ी गिल्स साइमंस के साथ। ये दोनों ही मुकाबले दूसरे राउंड के मुकाबले होंगे खिलाड़ियों के लिए, लेकिन अपने तीसरे राउंड का मुकाबला खेलते नजर आएंगे नोवाक जोकोविच, जिनका मुकाबला होगा बोस्निया के खिलाड़ी दामिर के साथ।
कार्यक्रम के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार करने की सहूलियत के मामले में भारत 23 अंकों के उछाल के साथ 77वें पायदान पर आ गया है। विश्व बैंक की ये रैंकिंग बुधवार को जारी की गई। स्विट्जरलैंड के डॉक्टरों ने एक नई तकनीक विकसित की है जिसकी मदद से लकवाग्रस्त मरीज दोबारा चल सकते हैं। डॉक्टरों की टीम ने बताया कि उन्होंने 3 लकवाग्रस्त मरीजों की रीढ़ की हड्डी में बिजली से चलने वाला एक उपकरण प्रत्यारोपण किया। इस उपकरण के जरिए मरीज के दिमाग ने उनके पैरों को सिग्नल भेजे। सऊदी पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या कैसे हुई, इसे लेकर तुर्की ने पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया है। तुर्की की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पहले से ही बनाई गई योजना के अनुरूप जमाल खाशोजी को सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में घुसने के तुरंत बाद गला घोटकर मार दिया गया। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सल्वा कीर ने अपने देश के लोगों से 5 साल पहले चले गृह युद्ध के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध ताकत की लड़ाई और जनता के साथ विश्वासघात था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।